हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण आपके साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मैं आ गई हूं स्टूडियो में लेकर अपने साथ तीन गेस्ट, और ये तीनों मुझसे बात करेंगे आज के इस टॉपिक पर। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हर इंसान शादी करता है, और शादी को लेकर एक बहुत ही मशहूर है कहावत कि एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। तो क्यों ना खा के पछताया जाए, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब ये लड्डू खा लिया जाता है, यानी कि शादी हो जाती है, उसके बाद शुरू होती है गृहस्थ जिंदगी। और इस गृहस्थ जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। काफ़ी सारे लोग इसे बहुत परफेक्टली निभा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट वाइफ की तलाश में ही रह जाते हैं। तो कैसे बन सकते हैं आप एक परफेक्ट हस्बैंड, इसके बारे में होगी आज हमारे स्टूडियो में बात, जिसमें मेरे साथ हैं अंकुश, हमारी आरजे दीक्षा, और मेरे साथ हैं डॉक्टर आरती, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है मैथमेटिक्स में मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहला सवाल मैं अंकुश से करती हूँ, और अंकुश से जानने की कोशिश करती हूँ। अंकुश, तुम अनमैरिड हो, ठीक है? और सबसे पहले तो तुम्हारा हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, थैंक यू सो मच
जी किरण। और ये अनमैरिड अंकुश जो है यहाँ पर बैठा है ये जानने के लिए कि हम डिस्कशन में कैसे फाइंड आउट करें कि एक परफेक्ट हस्बैंड बना जाए, क्यों?
Exactly, मैं डॉक्टर आरती का वेलकम करना चाहता हूँ, दीक्षा को हेलो बोलना चाहता हूँ, और किरण मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थैंक्स बोलूंगा क्योंकि तुम्हारे साथ आज जीडी में बैठने का मुझे मौका मिला
जी।
अनमैरिड हूँ मैं, सिंगल हूँ मैं, और 84 बॉर्न, 27 कंप्लीट हो जाऊंगा सितंबर में। और मैं इतना बता दूं कि अनमैरिड होने में भी एक अपना ही चार्म है, और इन दिनों में शादी अपना जो फ्यूचर है वो देखने का भी बहुत ज्यादा मुझे चार्म है कि अपना परिवार, एक वाइफ,
मेरा एक बेटर हाफ कैसा हो।
और मैं इतना जानता हूँ मेरे साथ तीन जो हैं, तीनों की शादियाँ हो चुकी हैं, और इसके ऊपर मैं सिर्फ अपना अभी जो मेरा व्यू पॉइंट है, एक जब बैचलर लड़का अपने शादी के दिन एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचता है और आगे कैसी लाइफ बिताना चाहता है, वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा तो अब जो शादीशुदा लोग होते हैं, वो जो मर्द लोग हैं, वो आके अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं।
बिल्कुल अंकुश, लेकिन यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं एक परफेक्ट हस्बैंड की, परफेक्ट वाइफ की नहीं, तुम बात कर रहे हो एक परफेक्ट वाइफ यानी अपने बेटर हाफ की। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बात करें अपने बारे में कि आप एक अच्छा बेटर हाफ बनने के लिए क्या क्या करना चाहेंगे।
सबसे पहले मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहूँगा
जी,
ठीक है? और अब तक जो मेरी फ्रेंड्स रही हैं या मेरे पार्टनर्स रही हैं, गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मैं उनके साथ जो जो मेरे ड्रॉबैक्स रहे हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं, जिनके कारण शायद
वो रिलेशन
हाँ लॉन्ग टर्म नहीं बन पाया, वो गलतियां मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूँगा। क्योंकि वहाँ से मुझे पता चलता है कि रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं शायद नहीं दे पाया, या मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरी गलतियाँ थी ताकि हम आगे झगड़ों में पड़े, तो वहाँ से कुछ लेसन्स मिले हैं मुझे।
यानी कि अंकुश का कहना है कि अपने बेटर हाफ को रिस्पेक्ट जरूर देनी चाहिए। अपनी वाइफ को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तब तक आप एक सक्सेसफुल हस्बैंड नहीं बन सकते।
देखिए, गलतियाँ इंसान से ही होती
जी।
जब तक बच्चा गिरता नहीं है, खड़ा नहीं होता, चलता है, गिरता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो ऐसे ही हर मिस्टेक से हमें लेसन मिलता है।
तो
कुछ गलतियां हुई हैं, तो वो गलतियां सबक बनी हैं, तो वो ऑब्वियसली आगे मैं करूंगा।
सबक बन चुकी है।
Exactly.
मेरे साथ है दीक्षा भी। दीक्षा, तुम्हारा भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच।
दीक्षा, सबसे पहले मैं तुमसे ये जानना चाहूंगी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे हस्बैंड हैं, और तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, और तुम काफी खुश हो अपनी जिंदगी से। तो मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ अपने पति द्वारा किए हुए कुछ ऐसे काम हम लोगों के सामने डिस्क्लोज करें जो कि आपको लगता है कि बेटर हाफ बनने के लिए बहुत जरूरी है, और जो क्वालिटीज आप अपने पति में देखती हैं।
जी बिल्कुल, क्वालिटीज के मामले में अगर बात की जाए तो आई थिंक माई हस्बैंड इज द बेस्ट, बिकॉज बहुत सारे हस्बैंड मैंने ऐसे देखे हैं जो शायद वाइफ से काम तो करवाते हैं घर का, लेकिन हाथ बटाने में शायद थोड़ा सा मुश्किल उनको फील होता है कि भाई खाना हम नहीं बना सकते क्योंकि हम भी थके हुए आते हैं
जी।
बट मेरे साथ भी ऐसा है कि मैं भी 10 घंटे अगर काम करके ऑफिस से घर जा रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मैं उनके बाद घर पहुंच रही हूँ और मुझे चाय पीने का मन है तो वो मेरे लिए चाय बना के पहले से रखेंगे, अगर उनको पता है कि आने वाली है मेरी बीवी, या वो कोशिश करके रखेंगे कि कुछ ऐसा स्नैक्स में रेडी करके रखें, अगर खुद नहीं बना सकते तो मार्केट से बिल्कुल ला के बनाते हैं।
यानी कि तुम्हारी केयर करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह अगर मैं नहीं उठ पा रही हूँ जल्दी या मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डेफिनेटली मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी कोशिश करते हैं कि बना लें, जैसा भी बना लें पर वो कोशिश करते हैं, और सुबह की चाय तो मोस्टली मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं।
चलिए दीक्षा, तो सुबह की चाय जो है वो अपने हस्बैंड के हाथ की पीती है, बहुत लकी है दीक्षा। यहाँ पर मेरे साथ है डॉक्टर आरती मिश्रा, और मैं जानना चाहूंगी कि वो कैसे अपने आप को लकी महसूस करती है अपने हस्बैंड से शादी करने के बाद?
देखिए किरण, इस मामले में मैं भी अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ही सपोर्टिव और कोऑपरेटिव हैं। और जैसा कि अभी हमारे साथ इन्होंने बताया है कि इनके हस्बैंड सुबह की चाय बनाते हैं, मेरे हस्बैंड भी डेफिनेटली डेली सुबह की चाय वही बनाते हैं। मैं उनसे काफ़ी लेट उठती हूँ, लेकिन मैं जब उठती हूँ तो मुझे भी चाय हमेशा रेडी मिलती है। हर घर के काम में वो भी मेरा सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात, यदि मैं कुछ काम करती हूँ तो वो अप्रिशिएट करते हैं उस बात को। वो मानते हैं कि मेरी वाइफ वर्किंग होते हुए घर संभालती है, बच्चे को पढ़ाती है, घर की साफ सफाई पर ध्यान रखती है, और हर चीज़ में वो मेरा सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सबसे बड़ी बात अप्रिसिएशन की होती है जो मुझे मिलता है।
जी, यानी कि अगर एक आपको बेटर हाफ बनना है एज अ हस्बैंड, तो आपको अपनी पत्नी को हमेशा हर समय अप्रिशिएट करते रहना चाहिए कि वो घर भी संभाल रही है, नौकरी भी संभाल रही है, और अगर सिर्फ घर ही संभाल रही है तो भी उसे अप्रिसिएशन मिलता रहना चाहिए कि हाँ, तुमने आज अच्छा खाना बनाया, या फिर तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मेरा दिन बन जाता है, या तुम्हारे हाथ की एक कप कॉफ़ी मेरे लिए मुझे रिलैक्स करने के लिए काफ़ी है। अंकुश, तुमसे मैं ये जानना चाहूँगी कि तुमने बताया कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ मेरे रिश्ते टूटे हैं मेरी कुछ अपनी गलतियों से, और मैं ये गलतियाँ नहीं दोहराना चाहूँगा ताकि मैं एक अच्छा बेटर हाफ बन सकूँ। अंकुश, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो वो कितना ज़रूरी है एक रिलेशन में, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? मतलब कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि यार बार बार थोड़ी कहा जाता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, बार बार थोड़ी कहा जाता है बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन एक बीवी हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि मेरा पति जो है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करता रहे टाइम टू टाइम।
किरण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। हर इंसान में तारीफ सुनने की भूख होती है। हम घर से निकलते हैं, हम अपने आपको तैयार करते हैं कि हम किसी से कम ना लगें। तो ऐसे में जब हमारा पार्टनर, हमारी फ्रेंड या फिर हमारी वाइफ है, तो वो सिर्फ सजती है अपने हस्बैंड के लिए, ना कि दुनिया के लिए, अब जो मुझे लगता है
जी।
और वो इसलिए सजती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, वो उसके हस्बैंड की पर्सनालिटी में कोई फ़र्क ना आ पाए। तो हस्बैंड को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरों की बीवियों की तारीफ करने के बजाय अपनी बीवी के साथ उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्स उसको दे कि हाँ, आज तुम सच में ही यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और रही खाना बनाने की बात, जैसे आरती जी ने कहा कि हस्बैंड्स चाय बनाते हैं, दीक्षा जी ने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए सुबह चाय बनाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अगर यूजुअली हस्बैंड्स जल्दी उठ जाते हैं, 5 o'clock योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक, कंडीशनिंग करते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाउस वाइफ है लड़की, तो वो पूरा काम करके ही सोएगी। अपने किचन में बर्तन गंदे रख के तो वो सोएगी नहीं, क्योंकि उसे सफाई पसंद होगी। तो सुबह वो थोड़ा आराम से उठे तो हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक हस्बैंड, अच्छे हस्बैंड की मेरे ख्याल से निशानी होगी कि वो सुबह अगर उठ रहा है तो उसे अपने वाइफ के पास जाके उसे बैठी दे।
जी right. वैसे सिर्फ यहाँ पे बात बैठी की नहीं है, बस बात ये है कि प्यार से कोई चीज़ उसे दिन में एक बार सर्व कर दी है, एक बार कह दिया हस्बैंड ने कि यस आई एम एट योर सर्विस मैम।
एग्जैक्टली, हर कोई रिस्पेक्ट चाहता है, हर कोई केयर चाहता है, केयरिंग लाइफ बहुत जरूरी है
जी।
खासकर जब शादी हो जाती
है, जो है बेटर हाफ बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया, और नहीं तैयार हुआ है तो आज हम उसे तैयार कर देंगे।
देखिए किरण, मैं पहले बता चुका हूँ कि गलतियों से इंसान सीखता है, और गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि हस्बैंड्स गलत होते हैं, गलत हर कोई हो सकता है। घर में झगड़े होते हैं, एक टोकरे में बर्तन पड़े हैं तो आवाज़ तो करेंगे ही।
बिल्कुल, यहाँ पर आज हमने जितना भी डिस्कशन अभी फिलहाल किया है वो किया है घर के कामों में थोड़ा सा हाथ बटाना और थोड़ा सा हेल्प आउट करना अपनी बीवी को। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब पति गुस्से में होता है या फिर किसी बात पर बहस हो जाती है और पति गुस्से में हो जाता है, तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पत्नी चुप रहे और वहाँ पर उसको सपोर्ट करे और उसे शांत करने की कोशिश करे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जब पत्नी गुस्से में हो जाती है और वहाँ पर अक्सर पति चुप नहीं रहते और उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम एक स्त्री हो और स्त्री की जो चारों तरफ की प्रतिबंध है वो हमें मतलब फॉलो करने चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम पत्नी हैं तो हमें कहीं ना कहीं झुकना चाहिए। दीक्षा, यहाँ पर अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जब पत्नियाँ गुस्से में आती हैं तो पति उन्हें हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुम एक स्त्री हो, और स्त्री जो होती है वो करुणा, प्यार, ममता से भरी हुई होती है, उसे गुस्सा शोभा नहीं देता।
जी जी, देखिए ये तो फैक्ट है कि लड़की अगर गुस्सा करती है, वाइफ अगर गुस्सा करती है तो उस पर वो सूट भी नहीं करता, अगर आप देखें लड़कियों को, क्योंकि जब वो डांटती हैं, चिल्लाती हैं, तो आप देखिए जितना भी मेकअप किया हो, जितना भी तैयार हो, जितनी भी सुंदर लग रही हो, वो चीज़ जो है उन पर सूट नहीं करती। तो लेडीज़ की बात जहाँ तक की जाए, उनको भगवान ने बनाया ही सॉफ्ट है, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि कहीं ना कहीं वो एकदम से गुस्सा जो है वो अंदर से बाहर आ जाता है।
और कभी कभी ऐसा होता भी है कि कुछ काम वाकई ही गलत हो रहा होता है जिसे वो टॉलरेट नहीं कर रहा पाती
नहीं
है, तो आखिर वो इंसान ही।
जी जी जी। लेकिन हस्बैंड्स का क्या है कि हमारी सोसाइटी में, आप सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगी, पूरे वर्ल्ड की बात करूंगी, जहां पर हमेशा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहा जाता है और हस्बैंड्स जो होते हैं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी वाइफ को थोड़ा सा तो दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जमाना बदल रहा है। अगर हस्बैंड की सैलरी 50,000 है तो बीवी भी 30 से कम तो आजकल नहीं कमाती है, और दोनों, अगर दोनों में से एक की भी सैलरी लुक जाए तो शायद घर का जो एक स्टैंडर्ड है वो काफी हद तक खराब हो जाता है, या फिर अगर खराब नहीं भी हो रहा तो थोड़ी तो रिस्ट्रिक्शंस आई जाती हैं, थोड़ा सा सेविंग्स पे फर्क पड़ जाता है। और ये आजकल के हस्बैंड्स जानते हैं, और हस्बैंड्स जितने भी लड़के होते हैं वो शादी करने से पहले कोशिश करते हैं कि एक पढ़ी लिखी बीवी लाएं, एक समझदार बीवी लाएं, चाहे जॉब करे ना करे, फ्यूचर में अगर उसे जॉब करनी पड़े या अपना बिजनेस करना पड़े या
तो
बच्चों को पढ़ाना पड़े,
एलिजिबल रहे।
जी हाँ बिल्कुल, यानी एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करके चलना चाहते हैं। और उस स्टैंडर्ड में गुस्से की जो है वो जगह, देखिए दोनों को गुस्सा आता है, तो गुस्सा हस्बैंड को भी आता है, गुस्सा वाइफ को भी आता है, और इसीलिए शायद झगड़े भी आजकल ज्यादा होते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने लेवल पर खड़े हुए हैं, दोनों ही अपने पैरों पर खड़े हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं, और दोनों कहीं ना कहीं फिर भिड़ जाते हैं अगर किसी बात पर कोई झगड़ा होता है तो।
तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होना भी एक बड़ा रीजन हो सकता है कि जब आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, कई बार होता है। आरती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी किसी परिवार में ऐसा भी है जो कि बहुत रेयर केसेस हैं, जहाँ पर औरतें जो हैं वो शायद अपने पति से ज्यादा कमाती है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो वाली बात आ जाती है, और वहाँ पर ये भी फील होता है, एक मेल ईगो को हर्ट होता है, वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी भी फील होती है, और वो ये भी फील करते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा अर्न कर रही है तो मे बी ये मेरी हर बात को काटेगी, या फिर वो किसी बात पे सजेशन भी देने की कोशिश करती है तो मेल ये सोचता है कि ये मुझसे ज़्यादा कमा रही है इसलिए मुझ पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, हालांकि उसके सजेशंस को भी डोमिनेट करने के तरीके से देखा जाता है।
डेफिनेटली ये चीज़ होती है, हालांकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ रेयर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं है। और यदि वाइफ वर्किंग है, वेदर वो ज़्यादा कमा रही है या कम कमा रही है लेकिन यदि वो वर्किंग है तो वो ईगो वाली प्रॉब्लम हस्बैंड के अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। यदि वाइफ वर्किंग नहीं होती है तो उस वक्त यदि वो टायर्ड है तो हस्बैंड्स उसकी बात सुनते हैं, उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं, हो सकता है आने के बाद, ऑफिस से आने के बाद वो उसका सर भी दबा दें प्यार से,
हाँ, क्योंकि उन्हें एक कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि ये औरत जो है मेरे पे डिपेंडेंट
है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मुझे इसकी पूरी केयर करनी है, और इसके पास और कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे वो अपना अपनी बात कह सके, अपना ध्यान रख सके। लेकिन अगर वाइफ वर्किंग है तो उस केस में उन्हें ये लगता है, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, और उन्हें ये भी लगता है कि ये तो भाई बाहर जाकर 10 लोगों से अपनी बात कर सकती है, इसके पास एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, तो फिर घर आके वो एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं। यदि तब उसका सर दुखता है तब वो ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, तब वो कहेंगे अच्छा इतना काम कर लिया तो तुम्हारा सर दुखने लगा, मैं तो सारे दिन काम करता हूँ, क्या मेरा सर इस तरह से नहीं दुखता है।
यहाँ पर अक्सर अंकुश ये वाली बात भी आती है, जब हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मुझे एक कप ऑफ टी मिले या कप ऑफ कॉफी मिले, और वो किसी भी काम को हाथ लगाने से पहले, या फिर उनको बीवी ये भी कह दे कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं, तब भी वो ये कहेंगे कि मैं सारा दिन काम करके आया हूँ तो मैं नहीं जा सकता, आई एम नॉट एबल टू गो। लेकिन जब बीवी सारे दिन काम करके आती तो ये चीज़ एक औरत के लिए नहीं सोची जाती, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अभी वो आई है तो मेरे को कॉफी बना के देगी, या फिर आई है तो घर का खाना भी वही बनाएगी, शाम के बर्तन भी उसने धोने हैं। वहाँ पर कहीं ना कहीं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, क्योंकि एक काम जो है ऑफिस का काम है ऐसा ही एक औरत के लिए है और ऐसा ही एक आदमी के लिए, लेकिन फैमिली में इस तरह की सोच शायद नहीं रखी जाती आज की सोसाइटी में फिलहाल।
देखिए किरण, सबसे पहले गुस्से को लेकर जो दीक्षा ने बोला, गुस्सा आता है, झगड़ा होता है, राइट। और मेरे ख्याल से जिस रिलेशन में झगड़े होते हैं वो रिलेशन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाता, सक्सीड नहीं कर पाता, क्योंकि रिलेशन सक्सीड तभी कर पाता है जब आपका एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, और जिसमें झगड़े नाम की दूर दूर तक कोई गुंजाइश ही ना हो। अगर आपके झगड़े चल रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से वो सक्सीड नहीं हो पाता। ये आप चाहे मैरिड लाइफ देख लीजिए और चाहे आप जो रिलेशंस हैं बिफोर मैरिज, वहाँ पर भी ये चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं, राइट। और अब आपने जो बताई कि ऑफिस के बाद चाहे वाइफ आ रही है या हस्बैंड आ रहा है, तो घर पहुँच के आपको एक घर का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रखना है। ऑफिस की कंट्रोवर्सीज, ऑफिस की कॉन्सिक्वेंसेज जो आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, लेकिन आपको घर पहुंचते ही वो चीज़ें ऑफिस तक छोड़ के आनी है। घर में आके आपको रिफ्रेश होना है, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, दिन भर आपके बॉस के साथ आपकी क्या बातें हुई हैं, ऑफिस में क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं, उनको भूल कर एक हेल्दी एनवायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है घर में। और रही अगर वाइफ थकी हुई है तो हस्बैंड को चाय बना देनी चाहिए, ये अगर देखा जाए दोनों तरफ की थका हुआ ज़्यादा जो है उसको रेस्ट करने दिया जाए, और आज मैं थोड़ा फ्रेश हूँ, मैं तुम्हारे चाय बना देती हूँ, तुम लग रहे हो मुझे, वाइफ बोलेगी हाँ तुम ज़्यादा थोड़े टेंस्ड हो, थके हुए हो, थोड़ा तुम्हारे देख के लग रहा है तुम्हारा इतना रिफ्रेश नहीं लग रहे हो तुम अभी, तो वाइफ कोऑपरेट कर सकती है, ऐसे में हस्बैंड कोऑपरेट कर सकता है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वो बन जाती है। शादी का मतलब यही होता है कि आप एक दूसरे को समझें।
हाँ, यानी कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की नीड को समझें। कई बार होता है कि बीवी जो है उसे बहुत तेज बुखार है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट किया जाता है हस्बैंड के द्वारा कि बीवी उसे मॉर्निंग में खाना बना के दे, उसको लंच पैक करके दे, ताकि वो जाए तो उसको ये एम्बैरेसमेंट वहाँ पे फील ना हो कि उसकी बीवी ने आज कुछ बनाया नहीं, और उसके फ्रेंड्स के बीच में इसे एम्बैरेस फील ना हो कि मेरे मैं आज खाना नहीं लेके आया, मैं बाहर से खाना खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी को आज बुखार था, उसने नहीं बनाया। बीवी है घर में तो उनको लंच चाहिए ही चाहिए। कई बार शारीरिक पीड़ा भी इस तरह से होती है और वहाँ पे समझा नहीं जाता, किसी की बीवी की शारीरिक पीड़ाओं को नहीं समझा जाता। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि एक हस्बैंड है, उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी बीवी को लेकर। शादी किसी ऐसी लड़की से हो जाए जो शायद उसकी सभी एक्सपेक्टेशंस पे खरी ना उतरे, तो वहाँ पर उसे बार बार महसूस किया कराया जाना क्या ठीक होगा कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो?
जी बिल्कुल नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपको कुछ उम्मीदें थी और उस पर अगर वो नहीं पूरी उतर पाई, आपका पार्टनर आपको लग रहा है कि यहाँ पर वो अभी भी कुछ मिसिंग है, तो उसके लिए तुम उसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आपका नेगेटिव पॉइंट होगा जो आपको झगड़े की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि बात एक बोलने का तरीका है, अगर प्यार से बोली जाए कि हाँ टेक योर टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़े समय की ज़रूरत है, और ऐसे में हम सीख सकते हैं। खाना बनाना नहीं आता वाइफ को, मेरा रिलेशन था, उसने बोला मुझे खाना बनाना नहीं आता, मुझे पता है कि उसको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता दूं, मेरे मामा जब शादी हुई थी, उस ज़माने में शादियां जल्दी हो जाती थी, उनकी 18 साल उम्र थी और पापा मेरे 26 थे, तो मेरे मामा को कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन मेरे पापा ने उन्हें
आपकी मामा को सिखाया।
और आज मेरी मामा के हाथ का खाना अगर कोई मेरे घर गेस्ट आता है तो वो बोलता है कि भाभी जी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, या मेरे फ्रेंड्स आते हैं वो बोलते हैं आंटी आपके खाना बहुत अच्छा बना। तो कहने मतलब ये एक डिपेंड करता है रिलेशन के ऊपर।
मेरे पापा ने आज तक बेटर हाफ आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए।
मैं आपको बताऊं, वही ना, मेरे पापा ने आज तक मेरी मम्मी को तू कह के नहीं बुलाया, लेकिन बात ये नहीं है कि जो तू बोलते हैं वो बुरे हैं, लेकिन एक डिपेंड करता है कि हम अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि अगर उनको खाना बनाना नहीं आता था, उन्होंने कोऑपरेट किया अच्छे से एडजस्ट किया और आज सब कुछ हेल्दी चल रहा है।
बिल्कुल हेल्दी चल रहा है। खुश रहने के लिए लाइफ में एक बेटर हाफ का होना बहुत ज़रूरी है, एक खुशहाल गृहस्थ जीवन बिताने के लिए। और खुशहाल गृहस्थ जीवन बिताने के लिए पति को कैसे परफेक्ट होना चाहिए, इसके बारे में हो रही है आज यहाँ पे बात। मैं हूँ किरण, आपके साथ ऑन रेडियो मानव रचना 107.8 फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मेरे साथ आज इस डिस्कशन में मौजूद हैं अंकुश, आजय दीक्षा और डॉक्टर आरती मिश्रा। अंकुश से तो बहुत सारी बातें हो गई हमारी, और अंकुश ने काफ़ी सारा डिस्कशन किया, अपने एक्सपीरियंसेस बताए, और अपने घर में अपने पेरेंट्स का स्टेटस को भी इन्होंने डिस्कस करके एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छा दिया। दीक्षा अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड है क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरे बेटर हाफ है, परफेक्ट पति है। तो चलिए दीक्षा से ही कुछ और टिप्स जान लेते हैं उनकी, एक परफेक्ट पति कैसे बना जा सकता है।
देखिए, सबसे बड़ी बात है, परफेक्ट पति की बात करें या परफेक्ट पत्नी की बात करें, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको 100 में से 100 नंबर वाला एक व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ आप जीवन बिताएं, तो वहां पर बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपका माइंडसेट जो होता है वो कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज ढूंढ के लाने की कोशिश करते हैं जो दुनिया में है ही नहीं,
है ही नहीं।
हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, किसी को खाना अच्छा बनाना आता है, किसी को नहीं आता, कोई सुंदर लगता है, कोई नहीं लगता, कोई बात अच्छे तरीके से करता नहीं है, या फिर दिल से बहुत अच्छा नहीं सोच पाता, लेकिन फिर भी आपकी केयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है क्योंकि आप उसके हस्बैंड हैं या आप उसकी वाइफ हैं। तो पहले तो जब आप शादी करने जाएं तो आप कुछ बातों का ध्यान ये रखें कि हमारे समाज में खासतौर पर जब अरेंज मैरिज की बात होती है तो ज्यादा आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, ज्यादा आप नहीं मिल पाते जब तक कि आपका रिश्ता तय नहीं हो जाता।
रिश्ता तय नहीं,
तो आपको ये दिमाग में रख लेना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस व्यक्ति की आपको तलाश है, उस व्यक्ति से जब आप शादी करने जा रहे हैं तो आपको किस किस तरह की चीजें चाहिए वो आप थोड़ा सा उनको सामने बता दें, और वो आपसे क्या चाहते हैं या आपकी पत्नी, आपसे होने वाली पत्नी आपको किस तरीके का देखना चाहती है, ये आप थोड़ा सा उनसे बैठ के डिस्कस कर लें। ये सिर्फ तब करें जब आपके रिश्ते की बात चल रही होती है, रिश्ता पक्का हो जाए उससे पहले कर लें, ताकि एक चीज सामने आ जाए कि भाई आप क्या चाहते हैं और सामने वाला आपसे क्या चाहता है, क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता पाएंगे या नहीं बिता
पाएंगे।
तो ये पहले एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये दिमाग में सोच के चलें कि आप भी परफेक्ट नहीं है, आपकी वाइफ भी परफेक्ट नहीं है, दोनों को जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे छोड़कर एक दूसरे के साथ कुछ चीजों में बिल्कुल एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जो होने वाली बीवी है वो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन पढ़ी लिखी बहुत है, समझदार बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, घर को बहुत अच्छे से रख सकती है, तो आप सारी जिंदगी जो है वो सुंदरता के लिए परेशान होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए
जी।
और आपके हस्बैंड अगर देखने में बहुत अच्छे नहीं है लेकिन बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है, आपका बहुत ख्याल रखेंगे, उनका नेचर बहुत अच्छा है, तो आप सारी जिंदगी ये ना सोचे कि भाई हमारे पति बहुत स्मार्ट बहुत हैंडसम नहीं है, हमें तो शाहरुख खान चाहिए था या हमें तो ऋतिक रोशन चाहिए था। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, भगवान आपकी जोड़ी बना के भेजता है ये सब मानते हैं।
यानी कि दीक्षा कंपेयर कभी भी अपने बेटर हाफ को नहीं करना चाहिए दूसरे से, और बिल्कुल भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि हमें जो भी मिलेगा वो बिल्कुल 100% परफेक्ट हो,
सोचना ही नहीं चाहिए
जी। परफेक्ट उसे बनाया जा सकता है या फिर उसे तरीके से समझाया जा सकता है कि देखिए मुझे तुम्हें ये क्वालिटी इंप्रूव चाहिए तो प्लीज अगर तुम इस तरह से कर सको तो करो, लेकिन ये ना कोशिश करे कि वो वही क्वालिटी बाहर किसी और में देखने की कोशिश करे, या फिर ये उसे पॉइंट आउट करे अपने बेटर हाफ को, अपनी वाइफ को, कि देखो वो ये करती है या उसका खाना ऐसा है या फिर वो ऐसे ड्रेसअप होती है, तुम भी ये करो, तुम्हें भी ऐसा होना चाहिए, उसे ये महसूस ना दिलाए। अगर उसे प्यार से समझाया जाए कि आप अगर इस तरह से इम्प्रूव करोगे तो ये चीज़ हो सकती है, ये आपकी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगा या फिर आपके स्किल्स इन्हांस हो रहे हैं, तो हमेशा हर औरत समझने की कोशिश ज़रूर करेगी। आरती मेरे साथ बैठी है, डॉक्टर आरती मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे पत्नियाँ जो हैं कई बार इस चीज़ से दुखी होती हैं कि वो कुछ शिकायत करती हैं जो कि उन्हें अपने पति से होती हैं, लेकिन उनके पति जो हैं उनकी शिकायतों को सीरियसली नहीं लेते।
डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये शिकायत हर एक लेडी की होती है
जी।
और वो दे ऑलवेज कीप ऑन कंप्लेनिंग, वो अपने पतियों से भी उस चीज़ की कंप्लेंट्स करती हैं, वो अपने फ्रेंड्स में भी कंप्लेंट्स करती रहती हैं, और बाहर किसी लेडी को कंप्लेंट सिर्फ इसीलिए करनी होती है क्योंकि उसका हस्बैंड घर पे उसकी कंप्लेंट्स को तवज्जो नहीं देता,
तवज्जो नहीं देता।
यदि वही तवज्जो उसे घर में मिले तो वो बाहर कभी नहीं कहेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें यदि एक हस्बैंड ध्यान रखे तो शायद वो परफेक्ट होने की तरफ अप्रोच कर सकता है। जैसे यदि वाइफ खाना बना रही है, आप खाना नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप सर्व कर सकते हैं, आप प्लेट्स लगा सकते हैं, उसी में उसे अच्छा लगेगा, आप डाइनिंग टेबल पे स्नैक्स ले जाके रख सकते हैं, वो चीज़ें उसे अच्छी लगेंगी। यदि वाइफ कपड़े धो रही है तो आप उसे ड्राई करवाने में या आप उसे उसमें हेल्प कर सकते हैं, उस चीज़ में बर्तन धो रही है उसे लगाने में हेल्प कर सकते हैं, घर में अपनी ही चीज़ों को सही जगह रख कर भी आप उसके उसका दिल जीत सकते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी औरतें जो होती हैं जो अपने पतियों से बिल्कुल काम करवाना पसंद नहीं करती हैं और वो अपना काम काफ़ी हद तक कर लेती हैं, लेकिन पतियों को ये भी सोचना चाहिए कि अगर पत्नी गाड़ी में खुद फ्यूल चेंज कर ले या फिर उसका टायर एक्सचेंज कर ले और या फिर गार्डनिंग कर ले तो पतियों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो परफेक्ट है। कहीं ना कहीं अगर उससे प्यार से सिर्फ इतना पूछ ले हाउ कैन आई हेल्प यू, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। दीक्षा
जी बिल्कुल, किरण एक्चुअली एक बहुत फेमस नॉवल है और उस किताब का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, यानी दो लोग जो अलग अलग ग्रह से हैं वो कभी सिमिलर नहीं हो सकते, वो कभी सेम नहीं हो सकते।
बिल्कुल,
तो जैसे लेडीज होती हैं उनका दिल बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है, चाहे कितनी भी आप बाहर से कोशिश कीजिए कि आप किरण बेदी की तरह लग सकती हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन दिल कहीं ना कहीं जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप शायद छोटी सी चीज को दिल पे लगा लेंगी और रोने लग जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, स्ट्रेस ले लेंगी, लेकिन हस्बैंड या फिर जो मेन होते हैं वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो भगवान ने उनको थोड़ा स्ट्रांग बनाया है, वो इमोशंस को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते। तो यही बदलाव एक स्त्री एक वाइफ शादी के बाद ला सकती है अपने हस्बैंड में, अगर प्यार है एडजस्टमेंट है तो आप शादी के बाद अपने पति को धीरे धीरे प्यार से, शायद इसमें साल दो साल लग सके, लेकिन समझाने की कोशिश कीजिए कि आप भी काम करती हैं, अगर काम ऑफिस में नहीं करी हैं तो घर की चीज़ों में वो किस तरीके से मदद कर सकता है, इंस्टेड कि आप चिल्लाना शुरू कर दें, आप गुस्सा करना शुरू कर दें, इससे सिर्फ बातें बिगड़ेंगी। पति या मेन जो होते हैं वो इतने समझदार या फिर कहा जाए कि इतने सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते हैं, तो उनको समझाने की उनको एक पॉलिशिंग की जरूरत होती है। अगर एक अच्छा परफेक्ट पति चाहिए तो डेफिनेटली आपको पहले उसके लिए उनको कुछ समझाना भी पड़ेगा।
बिल्कुल अंकुश, तुमसे मैं ये जानना चाहूँगी, कई बार बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं फैमिली में बैठकर, बड़े लोग बैठ के काफ़ी सारे डिसीजन लेते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे घर लेना है, लोन लेना है या फिर बच्चे की शादी करनी है। ऐसे में कई बार जो चीज़ें हैं, जैसे घर लेने वाली जैसी चीज़ें हैं, लोन लेने वाली जैसी चीज़ें हैं, पत्नियों से डिस्कस करके नहीं की जाती। वहाँ पर कई बार पत्नी ये सोचती है या फिर उस अपनी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं खोते या गुम होते हुए देखती है और उसे ये महसूस होता है कि उसका अस्तित्व सिर्फ रसोई तक है।
जी देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक लड़की कहाँ पैदा होती है और उसके बाद बड़े होती है अपने घर में ही, अपने फैमिली में ही, लेकिन जब शादी होती है वो दूसरे घर जाती है, वहाँ से फिर उसकी अर्थी उठनी आया है। आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड, लेकिन फिर भी मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप पैदा कहाँ हो रहे हैं और आपका जीवन अंत कहाँ हो रहा है, दूसरे घर में। और जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो पति को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि वो अपनी दुनिया छोड़ कर आई है तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के साथ रहने के लिए, और तुम अगर अभी भी उससे बेगाना समझते हो या अपने घर के कुछ सीक्रेट्स अपने तक ही रखते हो तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होगा मेरे ख्याल से। ये बहुत बड़ी कमी है जो दूर करनी, आज भी अगर किसी में है तो आज ही दूर कर लो, आज हो सकती है इतनी बड़ी।
कई बार होता है आरती जी की घर में जो बीवियां हैं उनको बहुत सारे मुद्दों से दूर रखा जाता है, काफी सारी चीजें जो होती हैं वो सीक्रेटली डिस्कस कर ली जाती हैं और पत्नियां जो होती हैं वो दूसरे कमरे में होती हैं, एंड सडनली व्हेन दे कम तो वो अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स पे पत्नी को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि वो एक मेजर डिसीजंस में कहीं इन्वॉल्व ही नहीं है, उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ घर में खाना बनाने पर है, दूसरों को सर्व करने पर है, या फिर सिर्फ रिस्पेक्ट देने पर है और आदर सम्मान करने पर है, लोग जो रिलेटिव्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनको कैटर करने तक है। लेकिन जहाँ पे मेजर डिसीजंस लिए जा रहे हैं या फिर जहाँ पर घर के लाभ हानि की बात की जा रही है वहाँ पे ऐसे ऐसे मसलों पे उसको इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक वाइफ किसी भी चीज़ पर उतनी अच्छी ही राय दे सकती है जितना कि एक मेल। वो एक अपने नज़रिए से देखती है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शायद इस बात का लोग ध्यान नहीं देते हैं लेकिन जब हमारे यहाँ हिंदू रिलीजन में शादी होती है हिंदू ट्रेडिशन से तो 7 फेरे लिए जाते हैं और उस वक्त उन 7 फेरों में 7 वचन होते हैं जिनमें से एक वचन ये भी होता है जो जब मेल ये वचन अपनी वाइफ को देता है कि मैं हर आर्थिक मामले में, दैट मीन्स हर फाइनेंशियल इशू में तभी डिसीजन लूंगा जब मैं तुमसे पूछूं और अपने हर इंटरेक्ट हर ट्रांजेक्शन का ब्योरा मैं तुम्हें दूंगा, ये एक वचन वो देता है। लेकिन शायद वो उसे निभाता नहीं है, कभी भी वो नहीं निभा पाता, हर बार वो उस चीज़ को भूल जाता है और हर अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन में वाइफ को इन्वॉल्व नहीं पसंद करता करना पसंद करता है,
अपने दोस्तों की इन्वॉल्वमेंट रख लेंगे,
दोस्तों
लेकिन
की इन्वॉल्वमेंट रख लेगा लेकिन वाइफ की इन्वॉल्वमेंट से उसका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होता है या उसे वो केपेबल नहीं समझता, जो कि नहीं होना चाहिए। वाइफ को बहुत खुशी होगी यदि आप हर छोटी छोटी,
या फिर वो अपने पत्नी को कई बार जब उसका नुकसान भी हो जाए, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई जॉब करने वाला ही है, कहीं ना कहीं उसे फाइनेंशियल स्ट्रेन है तो वो अपनी बीवी को शायद इसीलिए भी नहीं इन्वॉल्व करता होगा कि वो ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी के सामने मेरी इमेज किसी भी तरह से गिरे।
डेफिनेटली, और सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर मेल को अपने ऑफिस या वर्किंग प्लेस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डेली डिस्कस करनी चाहिए ताकि वाइफ को भी उसके वर्किंग एटमॉस्फेयर के बारे में पता रहे और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसके साथ शेयर कर सके, वाइफ उसका सपोर्ट कर सके। मेल्स अपने वर्क प्लेस के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं लेकिन वाइफ के साथ उन्हें अपने आज ऑफिस में क्या हुआ, किस तरह के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, सारी चीजें बताना चाहिए यदि वो एक परफेक्ट हस्बैंड बनना चाहते हैं तो।
जी,
एक और बात मैं कहना चाहूंगी, एक और पॉइंट है जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्लैशेस आते हैं, वो है ससुराल या ससुराल के लोगों को लेकर कि तुमने मेरी मदर का ये नहीं किया, तुमने मेरी सिस्टर के बारे में ये नहीं किया, उसका ऐसे ध्यान नहीं रखा। देखिए, अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है अपनी मदर या अपनी सिस्टर को लेकर वाइफ से तो वो आपको शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद डिस्कस कर लेनी चाहिए। कोई लिमिटेशंस यदि हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप चाहते हैं कि वो आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी हैं, ऐसा भी होता है तो वो आप उसे पहले बता दें।
बिल्कुल,
उन चीज़ों को लेकर बाद में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए कि पहले तो आप उसे छूट दे देते हैं कि भाई तुम जैसी हो वैसी ही रहो और बाद में आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं कि तुमने अपना सरनेम चेंज नहीं किया, तुमने मेरी मदर के सामने पल्ला नहीं किया, तुमने उनका पैर नहीं छुए, ये सारी चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं। तो इन्हें पहले ही उसे बता देना चाहिए और उसका सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट ले लेना चाहिए।
जी, बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पे बात हो गई है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रेन के बारे में हो, घर में ऑफिस इन्वायरमेंट को डिस्कस करने के बारे में हो, या फिर एक दूसरे का हाथ बटाने के बारे में हो, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है जो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ के बीच में हमेशा रहता है और वो है ईमानदारी। अक्सर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति ईमानदार होते हैं लेकिन बहुत सारे केसेस हैं जहां पर वो ईमानदारी को फॉलो नहीं करते। दीक्षा, जब पति ईमानदार नहीं रहता तो वो परफेक्ट पति नहीं रहता।
बिल्कुल, अगर पति की बात नहीं करूंगी यहाँ पर, मैं पत्नी के बारे में बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और उनमें वाइफ्स भी इन्वॉल्व होती हैं और हस्बैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक पति ही है वही चीज़ें छुपा रहा है अपनी वाइफ से तो पत्नी भी छुपाती हैं। आजकल का ज़माना ऐसा हो गया क्योंकि एक्सपोजर दोनों को मिल चुका है, बाहर दोनों जाते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन उनको लगने लग जाता होगा। तो वहाँ पर जो है ईमानदारी, कहीं ना कहीं आपकी जो ईमानदारी है वो पीछे छूट जाती है और आप अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से ये चीज़ें छुपाने लग जाते हैं। तो ईमानदारी जो है किरण, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक रिश्ते में, चाहे आपका रिश्ता माता पिता के साथ है, चाहे आपका रिश्ता भाई बहन के साथ है, चाहे आपका रिश्ता आपके ससुराल में है या आपके पति या पत्नी के साथ है। अगर आप ईमानदार नहीं है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपकी फैमिली को पता होनी चाहिए वो छुपा रहे हैं, तो फिर आप ये सोच लीजिए कि देखिए आपका जो झूठ है वो ज़्यादा दिन नहीं छुपेगा, वो डेफिनेटली कल या परसों नहीं तो कुछ समय बाद सामने ज़रूर आएगा। तो ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जीवन में। अगर आप ईमानदारी नहीं अपनाते हैं, ईमानदार नहीं है, चीज़ों को छुपाने में कोशिश करते हैं और वो चीज़ें जो आपके परिवार को पता होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को एक समय में खो देंगे।
जी, ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है और हर रिश्ते में, जैसे कि दीक्षा कह रही है, ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी मतलब ये है कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, भाई बहन के बीच में क्या बातें होनी चाहिए, किस तरह का रिलेशन उनका होना चाहिए वहाँ पे ईमानदारी हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन किस तरह का होना चाहिए वहाँ पे ईमानदारी हो।
राइट किरण, दीक्षा ने बिल्कुल सही बात कही है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये सोचता हूँ ये जो चैप्टर है शादी का, रिलेशन का, बंधन का, इसका पहला पन्ना ही ईमानदारी के नाम से शुरू होना चाहिए। ईमानदारी मेरे ख्याल से इंसान को ना कि अपने वाइफ के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से अगर हम खुद से ईमानदार नहीं है तो हम किसी से ईमानदार नहीं हो सकते। हम खुद से ईमानदार हैं तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों के साथ हमारा एक अच्छा बंधन, एक अच्छा रिश्ता बना रहेगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप से कितने ईमानदार हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, चाहे वो ऑफिस में देख लीजिए, चाहे वो आप किसी फील्ड को लेकर देख लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स में देख लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ में रिश्तों को लेकर देख लीजिए, पहला पन्ना ही ईमानदारी से शुरू होता है। मैं क्रिकेट खेला करता था और क्रिकेट के साथ साथ हम कुछ कभी कभी मस्ती में आउटिंग भी निकल जाते थे और पार्टीज़ में अल्कोहल यूज़ हो जाता था। तो मेरे सिस्टर को एक दिन पता चल गया कि आज ये पार्टीज़ है, तो उसने मुझे बोला तू जितना भी सीरियसली क्रिकेट खेल ले, कितना सीरियसली खेल ले, हार्ट को डेप्थ में जाके तू डेडिकेशन दिखा, लेकिन जब तक तू अपनी गेम के साथ, अपने खुद के साथ ईमानदार नहीं है तब तक तुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उसके ये बोल कोई 12 साल पुराने हैं, जब 12 साल पहले मैंने क्रिकेट शुरू किया था, 10 साल क्रिकेट खेला हूँ मैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक मैं उन चीज़ों में इन्वॉल्व था मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, और मैं अपनी गेम से और अपने आप से ईमानदार जब तक नहीं था तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, पहला पन्ना ही ईमानदारी से शुरू होता है।
जी, चाहे रिश्ता कैसा भी हो उसमें ईमानदारी होना ज़रूरी है, डेडिकेशन होना ज़रूरी है, एक दूसरे का सम्मान करना, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो एक परफेक्ट हस्बैंड अगर आपको बनना है तो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करिए, उसे बात पे टोकिए नहीं, उसे अप्रिशिएट करिए, उसकी हर तरीके से तारीफ करिए, उसका थोड़ा बहुत काम में हाथ भी बटाइए, उसको एक स्ट्रेस अगर है तो उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करवाइए और उसे ये एहसास दिलाते रहिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। और जितनी बार आप ये कहेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आपका रिश्ता उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। बिल्कुल मत हिचकिए ये कहने से और ये जताने से कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपको उनकी बहुत ज़रूरत है।
किरण, बिल्कुल सही बोला तुमने। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ना कि सिर्फ अपनी वाइफ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा के साथ ये बात बोलते बिल्कुल मत हिचकिचाइए, बिल्कुल हेजिटेशन मत फील कीजिए कि डैड आई लव यू, मामा आई लव यू, और कि अपने वाइफ को आई लव यू बोलिए। मतलब कि ये चीज़ बोलते किस चीज़ की शर्म है, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने पापा मामा
जी,
बोलिए, ज़रूर बोलिए यार, क्यों इसमें क्या शर्म वाली क्या बात है।
बिल्कुल, तो अंकुश आज जाके किसी ना किसी को बोलने वाला है।
हाँ, इसको मैं इसका मैं अननेसेसरीली बिल्कुल यूज़ नहीं करता इस वर्ड का, मामा को बोलता हूँ। पापा को मैं ये बात बोलना बिल्कुल नहीं भूलता, क्योंकि हम माँ के साथ ज़्यादा अटैच रहते हैं, लेकिन मैं पापा के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और उनको भी मैं चीज़ें बोलता हूँ कि डैड आई रियली लव यू।
जी, तो अपने बेटर हाफ को हमेशा ये एहसास दिलाते रहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप एक ना एक दिन परफेक्ट हस्बैंड जरूर बन जाएंगे। यही हमारे डिस्कशन का यहाँ पर मुद्दा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक परफेक्ट हस्बैंड की बात नहीं है, अगर आपको परफेक्ट वाइफ भी बनना है तो यही टिप्स आपके लिए भी है। इसी के साथ ये डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। दीक्षा, अंकुश और डॉक्टर आरती, आप तीनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ ये डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच
गाइस।
ये डिस्कशन हो रहा था परफेक्ट हस्बैंड कैसे बना जाए। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8, क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं आप लोगों के साथ बैठकर डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे शोज हैं जो आपको एंटरटेन जरूर करेंगे। फील गुड, फील लाइफ।